जो बिगड़ा है वो संवारने की अब कोशिश होगी दादू, कहते हुए आरवी बेड से उठ गई। कहाँ जा रही हो? आपके प्यारे पोते की झोली में आज के दिन की खुशी डालने। आज उनका खुश होना बनता है तो बस जा रहे हैं हम उन्हें खुश करने। क्या करने वाली हो? सोचा नहीं अभी, पर कुछ तो जरूर करेंगे। कुछ भी ऐसा मत करना बेटा जो अंशु तुम पर गुस्सा, तुमसे नाराज हो जाए। हो भी गए तो कहाँ जाएंगे नाराज होकर, आएंगे तो मेरे पास ही ना दादू। समझ क्यों नहीं रही हो बेटा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप दोनों के बीच, वो आगे कुछ कहते कि आरवी बोल पड़ी। फिक्र मत कीजिए दादू, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और करने के बाद अगर हुई कुछ गड़बड़ तो भी टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। इतना तो विश्वास है ना आपको हम पर कि हम संभाल लेंगे? दिनकर जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, पूरा विश्वास है हमें आप पर। जानते हैं आप अंशु को तकलीफ में नहीं देख सकती, और ये भी जानते हैं हम आप भी नहीं चाहती अंशु हर्ट हों। पर सच में बेटा, हम ये भी नहीं चाहते हैं आप हर्ट हों, आपको परेशानी हो। उसके गुस्से को जानती हो ना? जानते हैं दादू, उसके गुस्से को महसूस भी किया है मैंने, झेला है। उसके गुस्से की वजह से ही तो मैं उनको डेविल कुमार बुलाती हूँ। पर दादू, वो गुस्सा भी करते हैं ना, तो उनका गुस्सा जो वो हमसे प्यार करते हैं उसके आगे कम पड़ जाता है। बोले तो नज़र ही नहीं आता है अब उनका गुस्सा, उनकी मोहब्बत वाला पलड़ा भारी रहता है इतना कि अब वो गुस्सा भी करें तो हम पर तो सह लेंगे, संभाल लेंगे उनके गुस्से को, क्योंकि हमें पता है गुस्सा करेंगे वो हम पर तो बाद में प्यार भी करेंगे ना, वो भी बहुत सारा। आरवी ने अपनी बाहें फैलाकर मुस्कुराते हुए कहा। आरवी की बातें दिनकर जी के होठों पर मुस्कान ले आईं। तभी आरवी उनके पैरों को छूते हुए उनके सामने झुक गई। आशीर्वाद दीजिए दादू, हमें आज आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। दिनकर जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने आरवी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। आरवी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए बोली, वादा करती हूँ दादू, इस बार का तो कह नहीं सकती, पर अगले साल जब आपके अंशु का बर्थडे आएगा तो आप उनका बर्थडे उनके साथ धूमधाम से मनाएंगे, जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे। अगले साल का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पोते बड़े वाले जिद्दी है ना, तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले लें, पर मुझे उन पर विश्वास है, थोड़ा मुश्किल रहेगा पर वो मान जाएंगे। बाकी बप्पा ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है, आपकी विश ही ले लें वो आज, वो भी खुशी खुशी। इतना इंतजार किया है आपने दादू, थोड़ा और कर लेंगे ना? दिनकर जी आरवी की गाल पर अपना हाथ रखकर पलकें झपकाते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। आते हैं दादू, आप आराम कीजिए, बोलकर आरवी वहां से जाने लगी कि तभी दरवाजे पर रुककर दिनकर जी की ओर देखते हुए बोली, दादू। दिनकर जी, हाँ बेटा। मिस्टर मेहरा की मॉम का क्या नाम था? अनामिका, अनामिका मेहरा। और उनके डैड का? आरवी ने जैसे ही ये पूछा दिनकर जी की भौहें से कुड़ गईं। नाम जानकर क्या करना है तुमको?
कुछ नहीं करना है, बस यूं ही पूछ रहे हैं दादू, जब बता रहे थे बात तब तो आप मेरा बेटा बोल रहे थे, और अब मैंने नाम पूछा आपके बेटे का नाम तो मुंह बनाने लगे। खैर, कूल डाउन दादू, कूल डाउन, अपने पोते जैसे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वो अकेले ही काफ़ी है मिस्टर हुसैन सा की उपाधि के लिए। आप तो स्वीट हैं, सो स्वीट बनकर रहिए, और रही बात अपने ससुर के नाम की तो फिर कभी जान लेंगे, बस आप गुस्सा ना करें, कहते हुए आरवी ने हाथ जोड़ लिए।
मैंने कहाँ गुस्सा किया? दिनकर जी हैरान होते हुए बोले। नहीं किया तो करना भी मत, कहते हुए आरवी ने बतीसी दिखा दी। दिनकर जी नामे सिर हिलाते हुए बोले, आप भी ना आरवी बेटा। अच्छा दादू, एक बात और, पुरानी यादें तकलीफ दे रही हैं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं तो नई यादें बना लीजिए जो खुशी दें। नई यादों से आप इतनी खुशी बटोर लीजिए कि पुरानी यादों से मिलने वाली तकलीफ का एहसास भी ना हो, उसका फिर ख्याल ही ना आए। बचने की सिर्फ कोशिश नहीं, पक्का वाला बचाव कीजिए। ढूंढेंगे तो तरीके बहुत सारे हैं, मन पर लगे जख्म भर जाएंगे। जरूरी तो नहीं हर बार जख्मों को कुरेदा ही जाए, परमानेंट इलाज करना भी जरूरी होता है। चाहे तो किसी दिन किसी चीज से जुड़ी नई यादें भी बन सकती हैं। इतना कह आरवी वहां से चली गई। उम्मीद है अब हर जख्म भर जाए, दिनकर जी अकेले आरवी के बारे में सोचते हुए खुद से बोले, और बेड से सिर टिकाकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। माफ करना हमें आरवी बेटा, हम नहीं बता सकते आपको, डॉक्टर कपिल ही अनिकेत मेहरा हैं, मेरा बेटा और अंशु के पिता। आरवी ने बप्पा के मंदिर के बाहर अपनी बाइक रोकी, उसने हेलमेट उतारकर बाइक पर रखा और बाइक से उतरकर भागते हुए सीढ़ियों से होती हुई ऊपर बप्पा की मूर्ति के सामने चली आई। घंटी बजाई और हाथ जोड़ बप्पा की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुए मन ही मन खुद से बोली, बप्पा आप तो जानते हैं ना आज मिस्टर मेहरा यानी मेरे पति का बर्थडे है, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, वो अपना बर्थडे नहीं मनाते, पता है ना आपको, पसंद नहीं उनको आज का दिन, और क्यों ये भी आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं ना, मैं आज अपने लिए नहीं अपने पति के लिए कुछ मांगने आई हूँ। आपने हमेशा मेरी सुनी है, सारी विशेष पूरी की हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हो आप, जो मिला मुझे बेस्ट दिया है आपने बप्पा, मिस्टर मेहरा के लिए भी मैं सब अच्छा ही चाहती हूँ, वैसे तो उनके पास सब कुछ है
कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की, पर उस खुशी की कमी है जो नहीं होनी चाहिए, बर्थडे वाली खुशी। समझ रहे हैं ना आप, ये तो गलत बात है ना बप्पा। कितना अच्छा दिन होता है, कहूँ तो सबसे अच्छा दिन। वैसे तो हर दिन अच्छा ही होता है, पर हम हर दिन को बिजी शेड्यूल के कारण सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए एक दिन जो कि सच में खास होता है, जिस दिन हमें जिंदगी मिली होती है, हमारा जन्म हुआ होता है, पहली बार हम दुनिया में आते हैं, उसको तो धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए ना। पर मेरे हस्बैंड तो नफरत करते हैं आज के खास दिन से। पर कब तक, वजह जो भी हो, कब तक यूं मातम मनाते रहेंगे? हम नहीं चाहते सारी जिंदगी वो आज के खास दिन को वो यूं ही जाने दें। आप भी नहीं चाहते ना बप्पा ऐसा हो। आशीर्वाद दीजिए बप्पा, जो सोचा है मैंने करने का वो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊं, उन्हें मना पाऊं। कुछ पल रुककर सोचते हुए, आज हम अपने हस्बैंड का बर्थडे भी मनाएंगे और अपनी मदर इन लॉ की बरसी भी। इतना कह आरवी ने आयांश की खुशियों और लंबी उम्र की दुआ मांगी बप्पा से। फिर बैग से मिठाई वाला डिब्बा निकाल उसने बप्पा की मूर्ति के सामने रख दिया और आयांश के लिए एक बार फिर उसने अच्छे से हाथ जोड़ प्रार्थना की। सारी खुशियां देना बप्पा मिस्टर मेहरा को, उनका हर दुख हर लेना। मन तो कर रहा था हमारा मिस्टर मेहरा के साथ ही आए हम यहाँ उनके जन्मदिन पर बप्पा आपसे आशीर्वाद लेने, उनको अपने साथ मंदिर लाएं, पर वो आपसे कट्टे किए हुए हैं, नहीं मानते ना आपको। वो नाराज है आपसे, पर हम तो मानते हैं ना, हमें तो भरोसा है ना आप पर। एक ही बात है, वो आए मुस्कुराते हुए या हम आए, आप बस उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार सब ठीक हो जाए फिर पक्का आएंगे वो भी आपके दर्शन करने हमारे साथ, ओके? कहते हुए आरवी ने आंखें बंद कर बप्पा के सामने अपना सिर झुकाया और फिर मंदिर के प्रांगण में चली आई। प्रांगण में आते ही आरवी ने इधर उधर तेजी से अपनी नजरें दौड़ाई। पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी को ढूंढते ढूंढते आरवी ने मंदिर के ही एक आदमी से पंडित के बारे में पूछा। सुनिए, पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी वो उस ओर हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं। उस आदमी ने दाईं ओर इशारा किया। आरवी ने उनको धन्यवाद कहा और वहां से दाईं तरफ चली आई। आरवी की नजर पंडित जी पर पड़ी जो कि पूजा कर रहे थे। आरवी थोड़ी दूरी पर ही रुक गई और पंडित जी की पूजा पूरी होने का वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी।
इधर आरवी पंडित जी का इंतजार कर रही थी, उधर अयांश ऑफिस में उसे मिस कर रहा था। अपने फोन में आरवी की फोटो को एक टक देखते हुए मन ही मन बोला, आई रियली मिस यू वाइफी। तभी वॉशरूम से विनीत आ गया, अयांश को आरवी की फोटो में खोया देख मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है जाने मन, आज दूरबीन की जगह फोन से काम चला रहे हो, बीवी के दर्शन फोटो से कर रहे हो, दूरबीन से दर्शन नहीं हुए क्या? यहाँ होगी तब दूरबीन से उसके दर्शन होंगे ना, अयांश फोन में नजरें गड़ाई ही बोला। मतलब आरवी आज नहीं आई क्या हॉस्पिटल? पर वो आने वाली थी ना, विनीत बोल रहा था कि अयांश बोल पड़ा, प्लान चेंज हो गया उसका, किसी काम से गई है कहीं और, वो कर ही हॉस्पिटल आएगी। कहाँ और कौन सा काम? विनीत फट से बोला तो अयांश ने उसकी ओर देखते हुए कंधे उचका दिए, आई डोंट नो। बताया नहीं कि आरवी ने तुम्हें? पूछा नहीं आरवी से तुमने? विनीत ने जैसे ही ये कहा अयांश उसे घूरने लगा। अयांश को घूरता पाकर विनीत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरा मतलब ये था, तुम्हें पता होता तो तुम आरवी को लेकर इतना परेशान नहीं होते ना। वॉट, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ? अयांश भौंय से कोड़ते हुए बोला। परेशान से मतलब मिस कर रहे हो ना, वो बताकर जाती कहाँ कौन सा काम, उस काम में उसको कितनी देर लगेगी, तो आसान रहता ना वेट करना तुम्हारे लिए, तुम इतना मिस भी नहीं करते आरवी को, विनीत एक ही सांस में बोला। हो गया तुम्हारा? वो मेरे साथ ही आ रही थी, अर्जेंट काम आ गया फिर उसे, सो वो उस अर्जेंट काम से गई है। जरूरी तो नहीं है ना हर बात की एक्सप्लेनेशन लेना और देना, कहकर रही है वो काम होते ही आ जाएगी, सो आ जाएगी, दैट्स इट। और हाँ, परेशान होने में और मिस करने में फ़र्क होता है, जो तुम्हें तो समझ आएगा नहीं, सो जाकर अपना काम करो, अयांश ने विनीत को डांट दिया क्रमशः।